जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय अद्वैत चंद्र जय
गौर भक्त वृंद ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांशं श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कल हम जगन्नाथपुरी में थे सार्वम भट्टाचार्य के घर में और सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु जो मूर्छित अवस्था में थे तो जो भक्त गणे हैं वो जान रहे थे भक्त कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो अचेतन अवस्था है वो वापस आ जाए। तो सारे भक्त मिलके चैतन्य महाप्रभु के कानों में उच्च स्वर से हरिनाम का उच्चारण करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु चेतन अवस्था में हम वापस आ जाते हैं। हुंकार करिया उठे हरि हरि बोली आनंदे सार्वभौम तार लैला पद धूले। तो ये विशेषता है नाम के द्वारा ही वो चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवत विरह में मूर्छित हो गए थे, तो हम भी मूर्छित स्थिति में हैं भगवान को भूलकर। तो जिस प्रकार से इन भक्तों ने जाना दवाई क्या है इस अवस्था से बाहर निकलने की, हरिनाम। तो ये हरिनाम मेडिसिन चैतन्य महाप्रभु जो उन्नत धरातल पर है उनके लिए भी है और सर्व सामान्य जीव के लिए भी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव जागो जीव जागो। तो हम सब लोग एक अवस्था में सोए हुए हैं, इसलिए एनएची औषधि माया नाशी बार लागी। तो औषधि कौन सी है, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी मांग। मेडिसिन शॉप में जाते हैं मांग के लेते हैं कि नहीं, तो कहते हैं मांगो ये हरि नाम क्या करो, ये डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको लो, मांग मांग के लो। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु उस अवस्था से बाहर आने के लिए भक्त गण चांट करते हैं, तो उसी प्रकार से ये हरि नाम जो सुप्त अवस्था में जो भगवत चेतना से हम सो रहे हैं हम सबके लिए भी ये महान दवाई है। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे उठे, हुंकार करिया उठे हरि हरि बोली, मतलब सो के उठते ही पहले क्या निकलना चाहिए,
हरि हरि हरि।
तब तमोगुण हटेगा, तमोगुणी जो विषय है दिमाग आदि में वो निकल पड़ेंगे, सत्व में आएंगे। उठते ही टेंशन शुरू हो जाता है ऑलरेडी वो तमोगुण से बाहर आने के लिए आधा घंटा निकल जाता है उन विचारों में बैठे रहते उसमें क्या कहते हैं बेड में। तो आजकल तो लोग और तमोगुण में जाते हैं, वो बेड टी मंगाते हैं, बेड में बैठे बैठे और टी पियेंगे, ऑलरेडी तमोगुण में है, टी पी के और तमोगुण की अवस्था में वो वापस चले जाते हैं। तो मतलब तमोगुण का आनंद जो इतना निकृष्ट है वो जो जीव नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, तो उठते ही, और ये है स्वाभाविकता है, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे उठते ही जो गजेंद्र मोक्ष के कुछ श्लोकाज है वो चांट करने चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्यों को ये सॉन्ग देते थे, मंगल आरती शुरू होने से पहले आप उठे उसी समय से चांट करना शुरू करो, मुंह हर समय चलता रहना चाहिए। प्रेयर्स हो गया, वो स्पेसिफिक सॉन्ग होते थे, गाये जरूर विभावरी शेष आदि। तो वहां गौड़िया मठ में उस समय भक्तगण गाते रहते थे, उठते बाथरूम में जा रहे, ब्रश कर रहे, स्नान कर रहे, कपड़े पहनने तक, तिलक तक उनका चलता रहता था मुख में, हरि नाम प्रेयर्स वैष्णव सॉन्ग आदि। इस प्रकार से जो जो सुबह का जो स्थिति है, क्विकली हम सतोगुण में आते हैं, और सतोगुण वो प्लेटफॉर्म है जो हमें भक्ति सहज रूप से हम परफॉर्म कर सकते हैं। हुंकार करिया उठे हरि हरि बोली, आनंदे सार्वभौमतार लैल पद धूली, और सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत आनंद होता है। तुरंत क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरण धूली ले लेते हैं। सार्वभौम कहे शीघ्र करह मध्यान्न, मुई भिक्षा दिमु आजी महाप्रसादान्न। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते शीघ्र करह, तुरंत करो, क्या करो, मध्यान्न मतलब आफ्टरनून के ड्यूटीज करो, जैसे सुबह के ड्यूटीज हैं, उठते ही। सनातन गोस्वामी ने सारे डिटेल दिए हैं कि कब ब्रश करना चाहिए, टॉयलेट के बाद ब्रश करना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना सिस्टमेटिकली वैष्णव सदाचार दिया है। तो वो पढ़ के हैरान हो जाता है व्यक्ति हरि भक्ति विलास में। मैं जनरली बोल रहा हूं। तो वो कहते हैं जनरली टॉयलेट के बाद ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो अनवांटेड ये होते हैं, एयर्स है और कई चीजें हैं, वो चले जाते हैं। तो ये परफॉर्म ये किया गया है, कहा गया है सनातन गोस्वामी आदि ने, वैष्णव सदाचार में पढ़ते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था वैष्णव सदाचार के ऊपर, क्या करो, बुक कंपाइल करो। तो उसमें उन्होंने सारा गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ मिलके हरि भक्ति विलास किया, तो उसमें तो बहुत डिटेल है जो हम बहुत टफ है फॉलो करना। तो सार्वभौम कहे शीघ्र करह मध्यान्न, तो जैसे सुबह के ड्यूटीज हैं उसी प्रकार से आफ्टरनून के भी ड्यूटीज हैं। तो कहते अभी मध्यान्न करो, आफ्टरनून का कार्य करो, मैं आपको अभी प्रसाद सर्व करूंगा, किसका, जगन्नाथ का। मुई भिक्षा दिमु आजी महाप्रसादान्न, मैं भिक्षा दे रहा हूँ, दूंगा आपको महाप्रसाद जो जगन्नाथ के उच्चिष्ट हैं। समुद्र स्नान करी महाप्रभु शीघ्र आयला, चरण पा खाली प्रभु आसने बसिला। तो पक्के ये थे सारे चीजों को, एटिकेट्स को बहुत अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु फॉलो करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की दो चीजें हैं और उसी को चैतन्य शिक्षा कहते हैं, क्या, कि उनका आचरण बड़ा पवित्र है और दूसरा उनके एक्टिविटीज मधुर है। तो ये दो चीजों को कोई ठीक से जानेगा तो वो चैतन्य शिक्षा को समझ पाएगा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। समुद्र स्नान करी, तो चैतन्य महाप्रभु कहा गए स्नान करने, हाँ, तो उनके लिए नेचुरल है, वहां जब नवदीप में थे तो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, और जब पुरी में थे तो रोज सुबह उठ के समुद्र स्नान के लिए जाते थे, फिर आफ्टरनून में भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे, फिर आके प्रसाद लेते थे, फिर गोविंद थोड़ा रेस्ट करते थे, गोविंद उनका चरण सेवा करता था, मसाज आदि करता था चरणों का। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का ये नित्य नियम था, हरिदास ठाकुर आदि भी समुद्र स्नान के लिए जाना। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जाते हैं और आके अपने चरण धोते हैं और फिर कहाँ बैठते हैं, प्रसाद के लिए बैठते हैं। बहुत प्रसाद सार्वभौम आनाइल, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिल। कैसे लेना चाहिए प्रसाद, दुखी होकर नहीं, अरे ये चीज मुझे पसंद नहीं है, कहाँ डाला ये प्लेट में भक्त ने, परेशान होकर नहीं, क्योंकि कृष्ण कैसे भोजन करते हैं, आनंद आनंद, छल्ले बल्ले लड्डू खाए मधुमंगल, तो भक्त आनंद के साथ लड्डू का आस्वादन करते हैं। उस भोग आरती में तो बहुत अच्छा वर्णन है, वो मीनिंगफुल है बहुत, और बहुत स्वीट भी है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब भोग ऑफर होता है तब ये गाना चाहिए। तो एक बार मायापुर में थे डिवोटीज, तो मंगल आरती से पहले भोग लग रहा था। तो भक्त लोग 4 बजे से 4:30 भोग लगता है, तो 4 बजे कुछ भक्त गाना शुरू किए। क्या है उसका शुरुआत, भज भकत वत्सल श्री गौराहरी, श्री गौराहरी सोही गोष्ट बिहारी। हाँ, तो प्रभुपाद अपने रूम में थे लोटस में, तो नीचे वो मायापुर गए, तो जहाँ अभी प्रभुपाद व्यास आसन है वहाँ छोटा सा टेम्पल था ऐसा लंबा बस, वही। तो वहाँ राधा माधव, छोटे राधा माधव होते थे, उनको आज भी बंगाल के भक्त अभी भी ब्रह्मचारी सब कहते छोटा राधा माधव, छोटे नहीं कहेंगे छोटा। ये सबसे शुरुआत से है छोटे राधा माधव। तो उनका सेवा होता था, तो जब ये इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि प्रभुपाद एक एक चीज इंट्रोड्यूस करते थे। जब वो बहुत बीमार हो गए, नहीं उन्होंने नरसिंह आरती कब इंट्रोड्यूस किया, जब एक बार एक लेक्चर के बाद वो अपने रूम में आए विदेश में लॉस एंजलिस या कहा, तो बाहर के लोगों ने कुछ हाथ से बने हुए बम होते हैं ना छोटे छोटे, वो डाल दिए, तो आवाजें होने लगी कुछ ना, भक्त भी थोड़े डर गए। तो आ गए तो प्रभुपाद ने कहा मैं आपको एक नया प्रेयर सिखाऊंगा। तो प्रभुपाद ने ये नमस्ते नरसिम्हा ये प्रेयर सिखाया कि ये हमारी रक्षा करेगा। और जब वो बीमार भी हुए थे तभी भी भक्तों को प्रभुपाद ने इस प्रेयर के लिए कहा था। तो फिर भज भक्त वत्सल भी प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया, तो भक्त लोग गाए रहे थे, तो प्रभुपाद जैसे सुना 4 बजे मंगल आरती से पहले प्रभुपाद ने अपने सर्वेंट को भेजा कि जाओ उनको बोलो अभी बंद करो, ये समय नहीं है उसको गाने का। ये तो आफ्टरनून जब राजभोग ऑफर होता है तब ये कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान उस सॉन्ग में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण सुखे भोजन करी, सुख से भोजन करते वहां भी कहते हैं, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्यों सुख से भोजन करते हैं डिवोटीज, क्योंकि साथ साथ वह ये सोचते हैं कि कृष्ण ने इसको क्या किया है, चखा है, कृष्ण ने आस्वादन किया है, और इसी बात को वह आनंद का अनुभव करते। माधवेंद्रपुरी के बारे में हमने सुना, उनको इतना आनंद आ रहा था कि मिट्टी खाने में भी वो जो कुल्हड़ का मिट्टी है वो भी इतना वैल्यूएबल उनको महसूस हो रहा था, वो भी इतना स्वीट लग रहा था जितना वो अमृत के लिए स्वीट था, खीर था। बहुत प्रसाद सार्वभौमा, बहुत सारा प्रसाद आया लाए थे, तबे महाप्रभु सुखे। तो महाप्रभु ने बहुत आनंद के साथ लंच प्रसाद स्वीकार कर रहे थे। सुवर्ण थाली र अन्न उत्तम व्यंजन, भक्तगण संगे प्रभु करे न भोजन। अकेले नहीं प्रसाद पा रहे थे, अकेले प्रसाद पाना बड़ा ये है, कठिन है। महाप्रभु को सुवर्ण थाली में उनको प्रसाद सर्व किया था और कई सारे व्यंजन डाल रहे थे, और भक्तों के संग में चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे। सार्वभौम परिवेशन करे न आपने, प्रभु कहे मोरे देह लाफरा व्यंजने। तो महाप्रभु स्पेसिफिक व्यंजन मांगते, क्यों, अपने सन्यास धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो अलग अलग वर्ण और आश्रम का अपना अपना धर्म है। ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, क्या है ब्रह्मचारी का धर्म, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरुर हितम। उसका धर्म है कि केवल गुरु के हित के लिए कार्य करना, और प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वो कलेक्शन के लिए भी जाए भिक्षा तो किसको देना है लाके, ये नहीं कि मैंने इतना कलेक्शन किया थोड़ा सा जेब में भी रखता हूँ और बाकी गुरु को, तो ये वो कर्म बंधन बन जाएगा उसको। एक बार एक शिष्य भक्ति सिद्धांत महाराज का, उन्होंने कई लक्ष्मी कलेक्ट किया, मैं इतना कलेक्शन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है भक्ति सिद्धांत महाराज को दिया और कुछ अपने जेब में रखा। तो उन्होंने कहा भक्ति क्या क्या कर रहे हो, तो मुझे चाहिए होता है लक्ष्मी और आप इसको, तो उन्होंने कहा वैसे नहीं करो, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने की शक्ति तुम में नहीं है, जो भी चीजें दान के रूप में मिलती है उसके साथ वो कर्म भी आते हैं, तो शुद्ध हमें उसका वो पे करना पड़ता है। चाहे लोग भोजन खिलाते हैं, दान देते हैं, जिस स्पॉन्सर फिस्ट है वो सब हम ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव रहता है चाहे साधुओं के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, आप मुझे दे दो, सारे दे दो मुझे, सारा धन दे दो। तो उन्होंने सारा धन लिया और फिर तुरंत अपने जेब में डाल के भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने तुरंत जो लक्ष्मी उनको चाहिए था तुरंत उनको दे दिया। कहते ये सही है, अभी शुद्ध हो गया है वो जो धन है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने की शक्ति तुम में नहीं है, तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी का धर्म क्या है कि गुरु के हित के लिए कार्य करना, और प्रभुपाद कहते कि क्या लेवल कि भो भिक्षा लाए और गुरु भोजन, क्योंकि गुरु जब खाने के लिए दिए तब खाना है, अब वो भूल जाए आज आपको प्रसाद देना तो आपको भूखा ही रहना है, ये तो बड़ा टफ है। तो उसका हित क्या धर्म है कि केवल गुरु के दासवत सेवा करना, गुरु हितम नीचवत सेवा करना, ये तो ब्रह्मचारी केवल गुरु की सेवा में लिप्त रहा तो उसके लिए भक्ति सबसे सरल हो जाती है, उसके लिए कृष्ण प्रेम भगवत धाम जाना कुछ भी नहीं, उसके लिए केवल वो गुरु की सर्विस में चिपका रहे अपने आप को। गृहस्थ का क्या धर्म है, गृहस्थ सारे आश्रमों को सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है, तो उसका प्रमुख धर्म है दानम, चैरिटी, चैरिटी करना, दान देना। गृहस्थ बहुत बड़ा यह है, क्या कहते हैं, जिम्मेदारी का काम है। कितना जिम्मेदारी, कि सब चीजों को बैलेंस करते हुए भगवत भक्ति को परफॉर्म करना, वो असली तपस्या है। क्या क्या उसको बैलेंस करना पड़ता है, एक तो अपना जॉब आदि है, दूसरा अपने जो परिवार वाले हैं, तीसरा गुरु वैष्णव की आज्ञा, इन तीनों चीजों को लेके चलना होता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ उनके लिए इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन गृहस्थ के लिए बड़ा ये है, तो इसलिए वो लोग बहुत यह है पूजनीय है, इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। वानप्रस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का धर्म यही है कि वो डिटैच होकर तीर्थ या भ्रमण आदि करता है, स्त्री से जो शारीरिक संग है वो नहीं रखता, स्त्री साथ होती है लेकिन शारीरिक संग नहीं। और सन्यासी का धर्म क्या है, उपदेश देना, आशीर्वाद देना, कुछ तो आशीर्वाद गुरु होते हैं, केवल आशीर्वाद देना जानते हैं, है ना। मैं उसमें पढ़ रहा था राधानाथ महाराज की बायोग्राफी में, तो जब वो नेपाल में थे, नेपाल में किसी जगह, तो एक साधु था जो बैठा था बड़े आसन में और हजारों लोग आ रहे हैं और स्त्री आ रही है, पुरुष आ रहे, सब आ रहे, उनको आशीर्वाद लेने आ रहे, बस आप आशीर्वाद करिए गुरुजी साधु जी, तो ये पूरे सर में हाथ रख के आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और ये थे भ्रमण करने वाले मॉन्क थे, ये भ्रमण करते रहते थे जहां था, तो ये साधु के उसमें आ गए, उनके संग में आ गए, तो उन्होंने उनको बिठाया अपने साथ, तो वो आशीर्वाद भी दे रहा और ये बैठे हैं। और ये जो साधु थे ये वो इंग्लिश में बोलना जानते थे, तो इनको पूछते कहाँ से आए हो तुम, ये तो पूरा लंबा सब कुछ बाल बिल और बड़े थे, सारे कपड़े ऐसे, चप्पल आदि नहीं था, कपड़े भी ऐसे फटे टूटे और कितने महीनों से एक ही ड्रेस पहना हुआ था, और एक हाथ में काटी होता था बस, और कुछ नहीं, ना पैसे ना कुछ, पूरे ब्राह्मण भारत को भ्रमण कर रहे। तो उस समय वो साधु उनको पूछता, जब बात कर रहा था इंग्लिश में, तो लोग को समझ में नहीं आ रहा था किसी को, ये इंग्लिश केवल दो ही जानते थे वहां। और वो कहते हैं, वो कहता है कि आप क्या करते हो, आप कहाँ से आए हो, कहता अमेरिका से, यहाँ कहाँ आ गए, भारत में क्या करने आए हैं, कहते हैं हम सब अमेरिका जाना चाहते, मूर्ख हो तुम। तो इन्होंने तो ऐसे कह रहे थे, मतलब ये कि वो चाह, साधु का ये भावना था कि केवल बस आशीर्वाद दो, और जाने की इच्छा कहाँ थी उसकी, अमेरिका। कहते वहां इतना अच्छा टेलीविजन है, बहुत सारी चीजें उसने बोली, तो महाराज लिखते हैं कि क्या मैंने कैसे इस प्रकार के भी साधु होते हैं इंडिया में जो पूरा आशीर्वाद देते रहते हैं लेकिन क्या भावना रहती है भोग की विदेश गमन की। तो ऐसे आशीर्वाद गुरु बहुत है। और गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज तो दूर रहते थे एक बार, क्योंकि गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अपने चरण किसी को छूने नहीं देते थे, केवल एक ही व्यक्ति को छूने देते थे, वो थे उनके एकमेव शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु का ये जो चरणों का धूलि है इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड को तारने की इसमें शक्ति है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के सर में रखा करते थे चरण। और कभी कभी भक्ति सिद्धांत महाराज नवदीप में रानी धर्मशाला में या और एक स्थान है जहाँ लेक्चर देते थे, तो गौरकिशोरदास बाबा जी छुपके से क्राउड में पीछे सुना करते थे, कहते ये प्रभु सही है। ऐसा अप्रिशिएशन था गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति। तो वहां तो आशीर्वाद गुरु बहुत हो गए थे, आशीर्वाद बाबा जी नवदीप में। तो उस समय लोग उठते ही अलग अलग बाबा साधु स्वामी के पास जाके चरण पकड़ते थे। तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज सुबह उठते क्या करते थे, अपने चरण यहाँ तक लपेट के रखते थे, इससे किसी से कपड़ों से कोई छूने छुए नहीं। कोई आता था कहते नहीं नहीं मैंने, अब बाकी बहुत बाबा जी जो चरण आपने लंबे करके बैठे उनके पास जाओ और उनके छुओ करो, मैं नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से जो जो सन्यासी हैं उनका ये धर्म है कि उनको ये करे, लोगों को उपदेश दे। उपदेशानाम ही मूर्खानाम, और मूर्खों को उपदेश ना दे, मूर्खों को जितना मर्जी उपदेश देते रहो वो उनकी स्थिति कठिन है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसाद स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे केवल लाफरा व्यंजन दो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भोजन में बहुत तैयार रहते थे, हर समय सावधानी सावधान रहते थे। और पूरे उनके चरित्र से देखा गया है कि कितने कॉन्शियस थे। तो कहते लाफरा, लाफरा व्यंजन का मतलब ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो बीमार व्यक्ति को देते हैं। हम कभी कभी दिल्ली में ब्रह्मचारी कहते थे नहीं नहीं, ये कुक लोग बहुत सारा रोज ही बहुत मिर्च डालते हैं, बहुत ऑयली बनाते हैं। तो शुरू किया ईस्ट गोस्ट में डिसाइड किया कि नहीं अभी हम बॉइल्ड वेजिटेबल खाएंगे। तो एक बड़ा कुकर बॉइल्ड वेजिटेबल बनता था। तो जब शुरुआत में एक हफ्ता तो सबने बड़ा चाव से खाया, नया नया मुल्ला बहुत चिल्लाता तो सारे ब्रह्मचारी नहीं बिल्कुल अभी सत्वगुण में आएंगे। तो ब्रह्मचारी हॉल में टेंपल हॉल प्रसादम हॉल में सबको फिर वो भी सर होता था क्या बॉइल्ड वेजिटेबल्स। तो एक हफ्ता बड़ा आनंद आया लेकिन बाद में नहीं नहीं नहीं, नहीं कौन खाएगा ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स, आदि पुनः शुरू हो गए सारे, फिर बंद ही हो गए, अभी तो बंद ही होगा शायद। तो बड़ा उत्साह से शुरू हुआ था। और बीच बीच में फिर ईस्ट कोस्टी नहीं होता था एक दो महीना तो भूल जाते थे, जब होगा तब फिर से पॉइंट उठता था बॉइल्ड वेजिटेबल फिर शुरू होता था। तो महाप्रभु तो कहते हैं कि मुझे बॉइल्ड वेजिटेबल्स दो जिससे मेरे सन्यास धर्म की रक्षा हो सकती है। क्योंकि युवा अवस्था में सन्यास लिया था, सन्यास युवा अवस्था में, सन्यास लोग पूरा जर्नी करते हुए लेते हैं, आखिरी में लेते हैं। बाकी सब आश्रम क्या है, डेस्टिनेशन का जर्नी है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। वो कहते हैं ना अप्रभुपाद लिखते हैं कि वो गंतव्य स्थान नहीं है, आप बस यहाँ गए बस हो गया, यही डेस्टिनेशन है। ब्रह्मचारी आश्रम फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, ये क्या है, जर्नी का एक अंग है। हाँ, कोई गृहस्थ आश्रम तो वहां से तो जर्नी शुरू हो रही है, वहां बंद नहीं हो रही है, वहां तो जर्नी का बीच है बस। मतलब गृहस्थ लाइफ एक ऐसी चीज है कि पहले तो सारा कलेक्ट करो, सेटअप करो और फिर वानप्रस्थ में छोड़ के चले जाओ। तो कितना पूरा अरेंजमेंट करो, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, एनर्जी लगाओ, सब चीजें करो, और एक समय आएगा शास्त्र कहते क्या करो, आपको एंटर करो, आगे जाओ, ये जर्नी है। प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं ग्रहेशु, तो ये जर्नी है कहते हैं कि फिर आगे कहा जाओ वानप्रस्थ, वान प्रस्थान करो, वो समय आता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे इस युग में भक्ति के लिए सबसे बेस्ट आश्रम कौन सा है, तो गृहस्थ आश्रम। कहते गृहस्थ ही बनना चाहिए इस युग में भक्ति करनी है तो। तो मैंने जब पढ़ा तो आवाक हो गया मैंने कहा तो चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य ये दोनों इन दो आश्रमों का जो आदान प्रदान है कितने अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जो गृहस्थ का कर्तव्य है साधु और सन्यासी इसको वो वेलकम करे, उनको सर्व करे, उनसे उपदेश ग्रहण करे। और जो सन्यासी है उसको अपने शारीरिक भोग विलास आदि के लिए सुख सुविधा केवल गृहस्थों से स्वीकार नहीं करते रहना चाहिए। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते कि उसको क्या करना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, उसको देके आना चाहिए कुछ, न उसको कर्म बंधन का कारण बनेगा। पीठा पाना देह तुम्हें यहाँ सभा करे, तबे भट्टाचार्य कहे जुड़ी दुई करे। पीठा पाना, पीठा का मतलब है केक, पाना का मतलब है रबड़ी। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे बस बॉइल्ड वेजिटेबल चाहिए, लाफरा व्यंजन, और मेरे जो भक्तगण है उन सबको आप क्या दे दो, पीठा पाना दे दो, केक्स दो, डिफरेंट डिफरेंट केक्स। कौन कौन से केक्स है इनका डिपार्टमेंट है, कौन कौन से केक्स है दिल्ली में, पेस्ट्रीज, गोवर्धन, हनी और तो बहुत सारे हैं। तो जगन्नाथपुरी में विशेष केक्स बनते हैं, हाँ, तो वहां के जगन्नाथ के लिए। और ये सब चीजें यूज नहीं करते, क्रीम आदि ये सब चीजें नहीं, पीठा पाना। और विशेष रूप से वो रबड़ी ऑफर करते भगवान को वहां। तो कहते इन सब भक्तों को दो। और फिर ये जब सुनते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं लॉर्ड चैतन्य के लिए। जगन्नाथ कैसे करी आछे न भोजन, आज सब महाप्रसाद कर आस्वादन। ठीक है, आगे से आप केवल बॉइल वेजिटेबल खाना, लेकिन आज का आपका पहला दिन है कहाँ, जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथ कैसे करी आछे न भोजन, आप ये पहले आज ये करो, आस्वादन करो इसका, महाप्रसाद का, कि जगन्नाथ ने आज कैसे कैसे कौन कौन से भोजन व्यंजन आदि स्वीकार किए हैं। एतबले पिठा पाना सवा खाईला, भिक्षा कराय आज आचमन कराईला। तो एतबले ये बोलकर महाप्रभु ने फिर ताव से पिठा पाना पाया, केक आदि खाए और सब सब खाया। और भिक्षा होने के बाद उन्होंने आचमन आदि किया, हाथ पाव धो लिया अपने। आज्ञा मागी गेला गोपी नाथ आचार्य के लैया, प्रभुरा निकट आयला भोजन करिया। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो गोपीनाथ आचार्य के साथ भोजन करने के लिए गए। जब इनको सर्व करने के बाद तो उनका जब भोजन हुआ तो चैतन्य महाप्रभु के पास वो आते हैं गोपीनाथ आचार्य के साथ। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य कौन है? नमो नारायण, नमो नारायण बलि नमस्कार कैल, कृष्ण मति रास्तु बलि गोसाई कहिल। तो अभी प्रसाद आदि होने के बाद हाँ वो मिलते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावाद के प्रमुख प्रवर्तक थे तो वो क्या करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। कौन सा नमस्कार?
नमो
नारायणाय। और ये विशेष मंत्र है, सारे पुराणों में आप पढ़ेंगे कि कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। हर पुराण में मैंने लगभग 8 या 9 पुराण पढ़े तो हर पुराण में नमो नारायण को इतना ग्लोरीफाई किया है कि आप सोच नहीं सकते। तो जब रामानुजाचार्य को भी जिस सीक्रेट मंत्र मिला था उनके गुरुदेव ने दिया था वो कौन सा था, यही था। तो लेकिन ये मायावादी इसका दुरुपयोग कैसा करते हैं, वो कहते सन्यासी क्या है, दंड ग्रहण मात्रे न नरो नारायण भवेत। दंडा ग्रहण करने मात्र से जो नर है वो क्या बन जाता है, नारायण बन जाता है। ये भावना ये मायावादियों का। तो ऐसे मायावादी जो ये थे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को देखते ही नमस्कार कर दे, नमो नारायणाय, तो महाप्रभु को देख कृष्ण मति रस्तु। सन्यासी का काम ही है क्या कि सबकी मति किस में लगाए, कृष्ण में। तो कहते हैं गोसाई कहे लग कि आपका जो मति है वो कृष्ण में लगे, क्योंकि सन्यासी का ये धर्म ही है, जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, ये सन्यासी का धर्म है। जहां जहां जाए वहां वहां लोगों को वो कृष्ण के की ओर लोगों की मति को केंद्रित करे, डाइवर्ट करे, ये उसका धर्म है। सुनि महा सुनि सार्वभौम मने विचार करिला, वैष्णव सन्यासी हो वचने जानिला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पहले तो उनको आभास हुआ था, क्योंकि उन्होंने जब वो लक्षण देखे थे कि कृष्ण प्रेमेर ये महालक्षण है इनके शरीर में, ये सामान्य व्यक्ति के शरीर में लक्षण नहीं प्रकट हो सकते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब इन्होंने ये वचन सुने महाप्रभु के कृष्णेर मति रस्तु, तो वो विचार करने लगे कि ये कौन सा सन्यासी है, वैष्णव सन्यासी है। क्योंकि उस समय वैष्णव सन्यास का कोई ये नहीं था, ज्यादातर सन्यास लेते थे ये शंकराचार्य के अनुयायियों के आधार पर। गोपीनाथाचार्य कहे सार्वभौम गोसाई र जानिते चाहि कहा पूर्वाश्रम। तभी बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ इस साधु का, इस सन्यास का। पूर्वाश्रम कौन सा आश्रम?
पूर्वाश्रम,
हाँ, कई आश्रम में से जाना है हमें। तो ये पूर्व आश्रम में कौन थे गोपीनाथ आचार्य को ये पूछते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। गोपीनाथ आचार्य कहे नवद्वीपे घर जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर। इनका घर कहा था?
नवद्वीप
में, और जगन्नाथ नाम पदवी पुरंदर, मिश्र पुरंदर। तो ब्राह्मण थे वहां जगन्नाथ मिश्र नाम के, तो पुरंदर विद्वान आदि ब्राह्मणों को एक उपाधि दी जाती है। तो जगन्नाथ मिश्र को मिश्र पुरंदर नाम से भी वहां जाना जाता, उनको कहा जाता था। तो जगन्नाथ इनके पिता का नाम है विश्वंबर, विश्वंबर नाम यहार तारये हो पुत्र नीलांबर चक्रवर्ती हये न दोहित्र। तो विश्वंबर इनका नाम था अपने पूर्व आश्रम में, और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र थे, और नीलांबर चक्रवर्ती के दोहित्र उनके जो जो बेटी है उनके सन थे, क्या कहें, नातिया, नातिया पुत्र थे, पुत्र ज्यादा सरल है। तो हाँ, शची माता के क्या थे, पुत्र थे, शचिर नंदन। तो ये पूरा सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन हो रहा है पूर्वाश्रम का। देखो सारी चीजें उन्होंने उनके माँ का, माँ के फादर का, फिर इनके फादर का वर्णन किया। सार्वभौम कहे नीलांबर चक्रवर्ती विशारादेर विशारदेर समध्याहि यही तार ख्याति। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये जो नीलांबर चक्रवर्ती है किसके पिता है, सची माता के। हाँ, किसके पिता है, हाँ याद रखिए, नीलांबर चक्रवर्ती, जिन्होंने सबसे पहले जाना लेकिन सबके सामने प्रकट नहीं किया कि ये साक्षात कौन है, ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है। तो सार्वभौम कहे नीलांबर चक्रवर्ती विशारदेर समाध्यायी यही तारक ख्याति। कि ये विशारदेर मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता का नाम था महेश्वर विशारद, विशारद। तो उनके ये समाध्यायी मतलब क्लासमेट थे, क्या कहेंगे, मित्र थे, शालीय मित्र, सहपाठी, सही शब्द है, सहपाठी थे। इस कारण से वो फेमस थे। मिश्र पुरंदर तार मान्य है न जाने पितार संबंधे दोहा के पूज्य करी मानी। तो मिश्र पुरंदर जगन्नाथ मिश्र और इनके जो पिता थे सार्वभौम भट्टाचार्य वो सहपाठी थे और मित्र थे, इसलिए उनको दोनों के प्रति विशेष आदर था। नदिया संबंध सार्वभौम हर्ष हैला प्रीत हैया गोसाई रे कही तेला गिला। कौन ने अपने प्रदेश वाले व्यक्ति से प्रेम चाहेगा, मेरे देश का है। महाराष्ट्र का है, बंगाल का है, बिहार का है, ओडिशा का है, कौन नहीं चाहेगा। विशेषतः विदेश जाते हैं तो वहां से इंडिया का है ना, भारत होते तो ठीक है बंगाल का है, और बंगाल में भी होते तो नदिया डिस्ट्रिक्ट का है, तो ऐसे जाता है ना, फिर ऊपर ऊपर जाता है नीचे नीचे, तो कौन नहीं ये होता, चाहे जितना मर्जी दूर हो लेकिन वो आनंद अनुभव होता है कि अरे मुझे भारतीय मिला हमारे देश का, तो इनको भी हर्ष हैला, ये भी आनंदित हो गए कि नवद्वीप, क्योंकि ये कहा कहते सर्व भट्टाचार्य नवद्वीप के निवासी थे। सहज ही पूज्य तुम्हें आरत संन्यास आते हऊ तोमार आमी निजदास, मैं आपका पर्सनल सेवक बनना चाहता हूँ। कौन कहते हैं? सर्व भट्टाचार्य हऊ तोमार निजदास, कैसे तुम तो वैसे भी मेरे लिए पूजनीय हो क्योंकि तुम उनसे संबंधित हो, नीलांबर चक्रवर्ती जो मेरे पिता के सहपाठी है और उनकी जो पुत्री है सची के पुत्र हो, मिश्र पुरंदर के पुत्र हो, तो वैसे तुम पूज्य हो, और उसमें से और क्या है कि तुम सन्यासी हो, तो सन्यास सबके लिए पूजनीय है सन्यासी, चाहे कोई, क्योंकि सारे आश्रमों का सारे वर्णों का गुरु कौन है, सन्यासी है। अतएव हो तुम्हार आमी निज दास, तो मैं आपका निज दास बनने की इच्छा रखता हूँ। सुनि महाप्रभु कैल श्री विष्णु स्मरण, भट्टाचार्य कहे किछु विनय वचन। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य जो आयु से बहुत बड़े थे और ज्ञान विद्वत्ता से बहुत बड़े थे और इतने बड़े विद्वान थे कि मायावाद के हजारों हजारों सन्यासी उनके पास ट्रेनिंग के लिए आते थे, उन सबको वेदांत दर्शन पढ़ाया करते थे, क्यों, माया से बचाने के लिए, ये शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो ये कहां जाएंगे, माया में गिरेंगे, वेदांत में रस आना चाहिए इनको, इसमें वेदांत, तो उसमें रस आएगा तो ये माया के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे, तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये बात कही, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ये होते हैं विष्णु का स्मरण करते कि ये उचित नहीं है, मैं उस योग्यता का नहीं हूं, लेकिन आप मुझे वो चीजें बोल रहे हैं। भट्टाचार्य कहे किछु विनय वचन, तो भट्टाचार्य को जो चैतन्य महाप्रभु हैं बड़े विनम्रता के साथ उनसे व्यवहार करते बोलते हैं, और यही गुण है, विद्वान व्यक्ति का गुण क्या है, विद्या विनय संपन्न, यदि विद्या विनय से संपन्न नहीं है तो वो क्या है, अविद्या है, अविद्या बन जाती है, विनय का मतलब ये ह्यूमिलिटी, इसलिए कृष्ण कहते विद्या विनय संपन्न, तो विद्या का विनय के साथ ये होना बहुत आवश्यक है, मिलाप होना, तभी कोई व्यक्ति उस ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। तो ज्ञान तो लोगों के पास है लेकिन वो से ज्ञान अज्ञान मानी, भक्तों ने ठाकुर कहते से ज्ञान, वो ज्ञान क्या है, अज्ञान है, से ज्ञान अज्ञान मानी, तो इस प्रकार से यदि विद्या है लेकिन विनय नहीं है तो वो समाज के लिए उत्पात का कारण बन सकता है और खुद के जीवन के लिए भी उत्पात क्रिएट हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता के साथ विनय की मूर्ति है, तुम्हें जगद गुरु सर्वलोक हित करता, वेदांत पढ़ावो सन्यास सिर उपकर्ता, उनका योग्यता बता रहे कि तुम्हें जगत गुरु, तुम कौन हो, जगत गुरु हो, सर्वलोक हित करता, सर्वलोक हित करता मीन्स आप वेल विशर हो, सबके हितैषी हो, वेदांत पढ़ावो सन्यासी उपकर्ता, और विशेष रूप से आप सन्यासियों के ऊपर उपकार करते हो, उनको प्रसाद आदि खिलाकर उनको वेदांत की शिक्षा देकर, आमे बालक सन्यासी भाल मंद नाही जानी, तुमार आश्रय ने लो गुरु करी मानी, तो ये कहते हैं मैं क्या हूं, बालक सन्यासी हूं, यही बात उन्होंने सची माता को भी कही थी जब वो शांतिपुर में मिले थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे, जानी वाना जानी, जान के या अनजाने में मैंने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है, पता नहीं क्यों ज्वाइन किया संन्यास आश्रम। तो फिर महाप्रभु तो वो बाहरी रूप से बताना चाहते हैं, तो वैसे ही ये उनकी भावना है जो सारम भट्टाचार्य के प्रति बोल रहे हैं कि मैं बालक सन्यासी हूं, मतलब यंग सन्यासी हूं, नया नया सन्यास लिया है, मैं सन्यास के बारे में जानता नहीं, उसके उद्देश्य को नहीं जानता, सन्यास के कर्तव्य आदि को नहीं जानता, भाल मंद नहीं जानी, क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो नहीं जानता, तुम्हारा आश्रय नहीं लो गुरु करिमानी, मैं बस आपका आश्रय लेता हूँ, आपको मैं अपना गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। हाँ, तो हर समय जो भक्त है उसकी ये भावना होनी चाहिए, क्या भावना? सीखना। और कब तक सीखने की भावना? मृत्यु तक। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय वो एग्जाम है। कौन सी एग्जाम देनी है? सीखना है तो उसका एग्जाम तो होगा, वही है अंत्य काले च मामेव भगवद आसक्ति हृदय में प्रकट कराना। तो कहते इसलिए मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु उनको विनम्रता से कहते सर्वम भट्टाचार्य को, ये नहीं कह रहे मैं सन्यासी हूँ, ठीक है आप बहुत पंडित हो सकते लेकिन गृहस्थ है, मैं सन्यासी हूँ, मैं आपका भी शिक्षा देता हूँ, नहीं। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से एक दूसरे से व्यवहार, चाहे वो मायावादी, महाप्रभु को पता है वो कौन है, मायावादी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पर धर्म निंदा पर शास्त्र निंदा, ये दो चीजें नहीं करनी चाहिए, दूसरों के शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। चैतन्य शिक्षामृत नामक का ग्रंथ इतना साइंटिफिक है भक्ति विनोद ठाकुर ने जो लिखा है, जिसका फर्स्ट चैप्टर तो हर एक को पढ़ना चाहिए, उसमें तो यही है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना सिस्टमेटिकली किया है कि जीवों के बारे में दिया, फिर उन्होंने कहा कि जो भगवत उपासना है वो चार प्रकार से लोग भगवत सेवा में लगते हैं, जो आप पढ़ते हैं, एक भय के कारण, एक काम के कारण, एक कर्तव्य के कारण और एक राग के कारण। तो ऐसे चारों को लेते हुए वो आगे चलते हैं और कहते हैं कि चाहे ये चारों प्रकार से ही लोग क्यों ना लग जाए लेकिन वो भगवत प्रेम जागृत कर सकते, जो जीव का नित्य धर्म है। तो उन्होंने उदाहरण दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने ध्रुव महाराज का, चाहे वो काम के कारण गए थे भगवान के पास, गोप्या कामात भयात कंसहा, भागवत में कहा है गोपिया कैसे काम से, काम मीन्स डिजायर, ध्रुव भी इच्छा से ही भगवत सेवा में लगे थे लेकिन जैसे संपर्क में आते हैं शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे वर्णन करते हैं उसमें, और वहां भक्ति विनोद ठाकुर सारे वर्ल्ड के धर्मों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, उनको देखने के दृष्टिकोण के बारे में डिस्कस करते हैं। इतना अद्भुत भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे ये मायावादी है लेकिन उस व्यक्ति की भी निंदा नहीं करते और उसके शास्त्र की भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना दूसरे के शास्त्र की निंदा करो ना उसकी प्रोसेस की निंदा करो। तुम्हारा संग लागे मोर यहाँ आगमन सर्व प्रकारे करिबे आमाय पालन। मैं किस लिए जगन्नाथपुरी आया हूं? आपका संग करने के लिए। तुम्हारा संग लागे मोर यहाँ आने का उद्देश्य था कि आपका नाम तो मैंने बहुत सुना था क्योंकि ये ऑलरेडी सर्व भट्टाचार्य सार्वभौम सब सब में जो सर ज्ञान सारे नॉलेज आदि के जो ज्ञाता है उनको सार्वभौम नाम की उपाधि दी जाती है। तो सर्वम भट्टाचार्य ने ये जो न्याय शास्त्र था जो केवल बनारस में पढ़ाया जाता था और उसकी कोई सेकंड कॉपी नहीं होती थी, किसी को अलाउड नहीं था मतलब, तो ये इतने दिग्गज थे कि उन्होंने उस पूरे ग्रंथ को एक नया रूप में प्रस्तुत किया नवदीप में और हजारों लोग उसकी शिक्षा लेते थे से न्याय शास्त्र आदि का। तो इसी कारण से वो शुरुआत से भी जानते थे चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य के बारे में। तो महाप्रभु तुम्हारा संग लागी यहाँ आगमन सर्व प्रकारे करीब अमाय पालन और सब प्रकार से आप मेरा पालन करो। आज जे हाइल आमार बड़ा ये विपत्ति तहा है ते कहले तुम्हें आमार अव्याहति। तो आज ही घटना देखो ना, अभी आगे का नहीं, आज की घटना देखो, आज ही मेरे साथ कितनी बड़ी विपत्ति गुजरी थी। कौन सी? ये पहले दिन का डिस्कशन है जगन्नाथपुरी का। हमारा कौन सा दिन है ये? पहला दिन है जहाँ सर्वम भट्टाचार्य और महाप्रभु का संवाद हो रहा है। और वहां वो कहते आज की घटना देखो, आज ही मेरे जीवन में बड़ा विपत्ति आया था। कौन सा विपत्ति था? मूर्छित। कहा? हाँ वहा पुजारियों के हाथों से उनको डंडे मिलने वाले थे, बच गए। तो लेकिन आपने क्या किया इससे मुझे निकाला। भट्टाचार्य कहे एकले तुम्ही ना जाह दर्शने, अमार संगे जाब किम्मा अमार लोकसने। हाँ सही कह रहे हो, मैंने आपको बचाया है। इसी कारण से अकेले दर्शन करने के लिए मत जाना। अकेले नहीं, दो लोग होने चाहिए हर समय। ब्रह्मचारी को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, मंदिरों का नियम होता है, लेकिन कठिन है हमें यहाँ पालन करना। तो अकेले मत जाना दर्शन के लिए। क्या करो, अमार संगे जावे। किसके संग जाओ? या तो मेरे संग जाओ या मेरे और कोई एक व्यक्ति को आप दर्शन करने के लिए ले जाओ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन सामान्य दर्शन नहीं है। क्योंकि जड़ वस्तु के रूप में कृष्ण का स्वरूप नहीं है, चेतन है, आध्यात्मिक है। हम चेतन है लेकिन हम जड़ चीज से ढके हुए हैं, इसी कारण से चेतन वस्तु को हम नहीं देख पाते। तो चेतन वस्तु को देखने के लिए हमें भी पूर्ण चेतना में आना पड़ेगा, विकसित, पूर्ण विकसित चेतना जिसे कहते हैं। भक्तिनो ठाकुर ने चार चेतना का वर्णन किया है, तो उसमें कहते कि कौन है वो फाइनल चेतना, वो है पूर्ण विकसित चेतना। तो चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो वो वहां उनको नहीं देखते थे, साक्षात कृष्ण को देखते थे। बंसी ले हाथे, कि कौन सा रूप देखते थे? बंसी जिन्होंने हाथ में लिया ऐसे रूप को देखते थे। प्रभु कहे मंदिर भीतरे ना जाइब, गरुडेर पाशे रही दर्शन करीब। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं घुसूंगा, मैं कहा रहूंगा? तो क्यों गरुड़ के पास? क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज को जब पूछा, वो भी गरुड़ के पास ही दर्शन करते थे। हम तो पूरा अल्टर में पूरा जाने का प्रयास रहते, दक्षिणा भी ले लो लेकिन मुझे पूरा चरणों तक ले जाना। हाँ लेकिन हृदय और मन किसी और के चरणों में रखते। तो वहां जाने से नहीं लाभ, मन और हृदय को कहा रखना। मन मन मोर मन वृंदावन, चैतन्य चरितामृत में डिवोटीज कहते मेरा मन क्या है? वृंदावन। तो वास्तव में मन को वृंदावन बनाना है। श्रीमती राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में पहली बार कृष्ण से मिले तो मेरा मन वृंदावन है, प्लीज नयन पथगामी भव तुम्हें। कौन से पथ से आओ, कौन से रोड से आओ? अंदर नयन, नयन पथ, नयनों के रोड से मेरे मन में घुस जाओ हे कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, आगामी आओ ट्रैवल करो भव तुम्हें। तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु कहते मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो दर्शन करूंगा गरुड़ जी के पास। तो भक्ति सिद्धांत महाराज फॉलो करते थे, और आज भी कई वैष्णव हैं जो चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों को फॉलो करते हैं, गरुड़ जी के पास ही दर्शन करते हैं। तो हम पूरा अंदर जाते हैं। तो कई चीजें हैं, कई वैष्णव को पूछा तो अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए बहुत अंदर, तो कहा है कि सारी जो बना हुआ है वहां का एरिया, वहां सारी शालिग्राम शिलाएं हैं, रत्न सिमा नीचे वगैरह सब जगह, तो इसलिए नहीं जाते डिवोटीज आदि। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसके बाद कई बार जाते थे, हर साल बीच में जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको दर्शन की इतनी लालसा होती थी कि सारे नियमों को तोड़ के वो सीधा घुसते थे। कब? जब 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता है, नव ये रहता है क्या कहते हैं उसको, जब स्नान यात्रा होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान यात्रा, 15 दिन भगवान बीमारी का बहाना बनाते हैं, और फिर उसको एक विशेष नाम है नेत्र उत्सव। हाँ जब 15 दिन के बाद भगवान का दर्शन होता है तो वो फेस्टिवल है। फेस्टिवल किसके लिए? आंखों के लिए, नेत्र उत्सव या फिस्ट फॉर आईज, आंखों के लिए फिस्ट। आंखों के लिए फिस्ट क्या है? इसको देखना, कृष्ण को देखना। तो महाप्रभु जब 15 दिन के बाद समय आता था तो सुबह सुबह सबसे पहले अपने संगियों को लेकर दौड़ते थे, पूरा अंदर जाते थे, और पूरे दिन एक ही जगह खड़े रहकर केवल जगन्नाथ को देखते थे। ऐसे नहीं कि ठीक है, अभी देखता हूँ 10 मिनट देखता हूँ क्या देखू, रोजे तो देख रहा हूँ, वही बांसुरी है, वही कपड़े है, कुछ आनंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे दिन देखा करते थे, तो उन्होंने कहा गरुड़ के पास, तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज को पूछा प्रश्न, तो उन्होंने दे कि मुझ में तो योग्यता है ही नहीं कृष्ण को देखने की, लेकिन कृष्ण अपने डिवोटी को जरूर देखते हैं, क्योंकि हम नहीं देख सकते, जड़ वस्तु को देखने की हमारी योग्यता है, हमारी आंखें किस चीज को देखने के लिए बनी है,
जड़।
हाँ, जो चिन्मय वस्तु है इस भौतिक जगत से परे जो चीज है उसको देखने के लिए आंखें नहीं बनी है, ये तो आध्यात्मिक चीज को देखने के लिए बनी है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते मैं नहीं देख पाऊंगा, हाँ लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि कृष्ण अपने भक्त की ओर दृष्टिपात करते, अपने भक्त को देखते, और उनके भक्त कौन है, गरुड़ जी, बस मैं उनको पकड़ के रखता हूँ ताकि उनको देखेंगे तो साथ साथ मुझे भी देखेंगे, तो बस यही मेरी मोर यही अभिलाष, यही मेरी एक अभिलाषा है, भक्तों के चरणों में चिपक के रख जाओ एक ना एक दिन। तो इसलिए सारे डिवोशनल एक्टिविटी का यही सार है कि कृष्ण साइड ग्लांस करे हमारी छोटी सी सेवा के प्रति या हमारे एक्टिविटीज के प्रति, थोड़ा सा कृष्ण का दृष्टिपात हो जाए, इसलिए कई अष्टकम भी हैं, जैसे राधा कृपा कटाक्ष, हम तो कृपा लेने के लिए थोड़ा भी कटाक्ष हो जाए मेरी ओर, या कृष्ण कृपा कटाक्ष, कितनी सारी चीजें हैं कि थोड़ा सा भी एक मेरी ओर देखे। तो इस प्रकार से गरुड़ के पास भक्ति सिद्धांत महाराज आदि खड़े रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा अंदर नहीं जाऊंगा, गरुड़ जी के पास ही खड़ा रहूंगा, गरुड़ेरा पाशे रही दर्शन करे। और चैतन्य महाप्रभु आज भी आप जाते तो गरुड़ जी के पास हाथ रखते हुए जगन्नाथ को, और वहां से जगन्नाथ जी दिखाई देते हैं गरुड़ जी के पास, ये विशेषता है, आपने देखा होगा वहां लॉर्ड चैतन्य के क्या है, उंगलियों के निशान है, तो जब भी भक्त जाते हैं उसमें अपने हाथ डालते हैं, उस मूड में आ जाते हैं, वो जगन चैतन्य महाप्रभु ने हाथ लगाए है, वो बड़ा दीवार है ना इसका, तो वहां उनके हाथ के निशान है, तो सब भक्त उसमें उंगली डालते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे खड़े होके थोड़ा आप झुकोगे तो भगवान आपको दिखते हैं, और फिर उसी समय नीचे एक पत्थर में लॉर्ड चैतन्य के चरण अंकित हो गए थे भगवान को देखते देखते, तो राजा ने वो निकाल लिया वहां का पत्थर, और बाहर आपको टेम्पल दर्शन करते चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह, महाप्रभुर चरण चिन्ह ऐसे नाम लिखा हुआ है महाप्रभुर। गोपीनाथाचार्य के कहे सार्वभौम तुम्हें गोसाई रे लैया कराये दर्शन, तो गोपीनाथाचार्य को कहा, वो आज तो मैं भूल गया, बहुत लंबा समय हो गया, 8:12 गोपीनाथाचार्य के कहे सार्वभौम तुम्हें गोसाई रे लैया करी है दर्शन, आप किसको लेके जाओ, इस गोसाई को ले जाओ, गोसाई कौन है, चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड चैतन्य, तो उनको लेके जाओ दर्शन करने के लिए, एक दोपहर पड़ता हो फिर हम एंड करते हैं। हमारा मात्र श्वसाग्रह निर्जन स्थान तहावासा देह कर सर्व समाधान, और उनके रहने की भी अरेंजमेंट करते हैं, मात्र स्वसा मैटरनल आंट मतलब क्या होता है, मामा मामी, हाँ मामी का जो घर है वहां अज्ञात रूम आदि है, फैसिलिटी है, वहां इनको रुकाने की व्यवस्था करो और सारी सुविधाएं दो। गोपीनाथ गोपीनाथ प्रभु लैया तहा वासा दिला जल 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 पात्राधिक सर्व समाधान कैला, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का रहने की व्यवस्था गोपीनाथ आचार्य करते हैं, सर्वम भट्टाचार्य वो सुविधा प्रदान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहां अपने भक्तों के संग में निवास करने लगते हैं। हम कंटिन्यू रीडिंग करेंगे कल। चैतन्य देव की चैतन्य चरितामृत की श्रील कृष्णदास।